राधा रानी हे श्री कृष्ण ही है और कृष्ण राधा रानी है, एक आत्मा दोष प्रभु, लेकिन अनेक रस का आस्वादन करने के लिए कृष्ण राधा रानी में प्रकट होते हैं ताकि अनेक रस दोनों के संग से पैदा हो और उनका आस्वादन कर सके। तो उसके लिए कई सामग्रियां, कई सखियां, कई किंकरियां, कई पार्षद सखा और विहार करने वाला स्थल वृंदावन, ये सब जरूरी है। तो आज तक हमने राधा रानी के बारे में कई कुछ सीखा, आज से हम राधा रानी का जो वर्णन है उनकी सखियों के साथ वो देखेंगे। पहले हमने देखा कि श्री राधा की हंसिनी का नाम तुंडी केरी है। यह हंसिनी श्री राधा के निज कुंड श्री राधा कुंड में विचरण करती है। उनकी मयूरी का नाम तुंडिका तथा सारिकाओं मैना पक्षियों के नाम सूक्ष्मदी, सूक्ष्म बुद्धि वाली सूक्ष्मदी, दी मतलब बुद्धि, सूक्ष्मदी तथा सुबा है। और इन दोनों को सारी बोलते हैं, सारी सारी का सारी, ये राधा रानी का हंस, उनका नाम हंसिनी का नाम है तुंडी केरी। अपने नाथ श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला का अवलंबन करके श्री ललिता देवी जिन मनोहर गीतों की रचना करती है, ये दोनों सारिका है, उन्हें सुमधुर स्वर से विचित्र वाक्यों में पाठ करते हुए सखियों के मन में उद्भुत रस का संचार करती है। तो ये सारिका है, सूक्ष्मदी और सुभा, ये दोनों सारिका है, सुमधुर स्वर से ललिता सखी के बनाए हुए गीत बहुत मधुर गाती है, सुमधुर स्वर से गाती है राधा और कृष्ण को आनंद देने के लिए। श्री राधा के भूषण आभूषण 16 श्रृंगार, क्या वो पहनती है आभूषण? तो श्री राधा के तिलक का नाम स्मर यंत्र, ये आभूषण है। हम जो तिलक लगाते हैं वो क्या है? वैष्णव का आभूषण। कोई कई लोग पूछते हैं ये नाक पेंट क्यों करते हो, क्या कहते हैं? इसलिए अंग्रेज लोग अमेरिका यूरोप में, दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन, व्हाई यू आर पेंटिंग योर नोज, व्हाई यू आर पेंटिंग योर नोज। तो पेंटिंग क्या है? आभूषण है। जैसे बिंदी या सिंदूर या मांग भरती है स्त्रियां, तो ये आभूषण है। सुंदरता और बढ़ाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ब्यूटीफुल तिलक मीन्स ब्यूटीफुल फेस, तिलक से चेहरे की सुंदरता और बढ़ जाती है। हर रोज सबसे पहले तिलक लगाना चाहिए। नास्तिक लोगों को ये कुछ अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन हमें किसी की चिंता नहीं करनी है, हमें भगवान को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हैं, और भगवान कृष्ण भी खुद तिलक लगाते हैं ना। ब्यूटीफुल फेस मीन्स ब्यूटीफुल, राधा रानी भी लगाते हैं, राधा रानी भी तिलक लगाते हैं। सो उनके तिलक का नाम क्या है, कितना सुंदर नाम है, समझ में आया? स्मर यंत्र का अर्थ क्या है? स्मर का अर्थ है कामदेव, हार का नाम हरि मनोहर, हार का नाम क्या है? हरि मनोहर। रत्नमयी तांग कान के आभूषण है, रत्नमयी आभूषण, तो कान का आभूषण का नाम रोचन है, तथा नासिका की मुक्ता का नाम है प्रभाकर। ए मुक्ता, ए मुक्ता, ए मुक्ता का हमेशा राधारानी मुक्ता पहनती है, और चंद्रिका, चंद्रिका और मुक्ता होगा ही। मुक्ता का नाम क्या है? प्रभाकर। और वृक्ष स्थल पर स्थित मदन नामक पदक के अंदर गुप्त रूप से श्री कृष्ण की छवि विराजमान है, लॉकेट में अंदर गुप्त रूप से कृष्ण की छवि विराजमान है। श्रीमती जी के श्याम तक मणि का दूसरा नाम संचूर शिरोमणि है। श्री राधा की सौभाग्य मणि अर्थात रक्षा स्थल पर लटकती हुई मणि अपनी प्रभा द्वारा पुष्पवंत को भी दिखाती है, पुष्पवंत को भी दिखाती है। उनकी उनका तेज, मणि का तेज इतना सुंदर होता है। चरणों में जो कटक सोने के कड़े हैं उनका नाम चटकाराव, चटकाराव है, क्योंकि उनकी झंकार चटक शब्द के समान है, चु, 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 तो चटक 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 ऐसे झंकार लगती है, शब्द के समान है, इसलिए उनका नाम चटकाराव। केयूर अर्थात अंगद मणि कर्पूर नामक रंग बिरंगी मणियों द्वारा सुशोभित है, अंगद मणि कर्पूर नामक रंग बिरंगी मणियों द्वारा सुशोभित है। कुछ गले का राधा, श्री राधा की नामांकित मुद्रा अर्थात अंगूठी का नाम विपक्ष मद मर्दिनी, विपक्ष से चंद्रावली का मद अभिमान का मर्दन करने वाली उनकी अंगूठिया है। एक्चुअली चंद्रावली, चंद्रावली बेचारी, चंद्रावली शांत अनुकूल, कृष्ण कहे वो सवा लाख दिन हो, कृष्ण कहे रात है, हाँ रात है, बहुत अनुकूल, अनुकूल चंद्रावली बहुत अनुकूल, और राधा रानी तुरंत कृष्ण को मान सब कुछ। तो विपक्ष मद मर्दिनी ये अंगूठी राधा रानी की, कांची अर्थात करधनी का नाम कांचन चित्रांगी, ये करधनी नितंब पे जो करधनी होती है वो कांचन चिंत्रांगी तथा नुपुर का नाम रत्न गोपुर है। नुपुर का नाम क्या है? रत्न गोपुर। इनकी जानकार श्री मधुसूदन को भी जड़वत बना देती स्तन। कृष्णा तुरंत इतना मुक्त हो जाते हैं कि हिल नहीं सकते। उनकी जानकार से आ रही राधा रानी चुम 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 चुम, तो कृष्णा स्तब्ध हो जाते हैं। जानकार नुपुर की सुंदर कथा है, कहनी चाहिए। आपको पता है श्यामानंद की कथा है ना? किसको पता है श्यामानंद? एक दो तीन, तो आप कह देना बाद में, ठीक है? श्यामानंद की कथा, ये जब हम लोई बाजार जाते हैं तो सारा लोई बाजार एक्चुअली सेवा कुंज ही है, सेवा कुंज। तो लोई बाजार से हम राधा दामोदर मंदिर पे जाते हैं तो लेफ्ट में पहला मंदिर राधा श्याम सुंदर का पड़ता है। तो ये राधा श्याम सुंदर, ये श्यामानंद के विग्रह है। तो ये सारा विस्तार जो है लोई बाजार से लेके जमुना तक और श्रृंगार भट्ट और इधर नीतुबन ने ये श्रृंगार भट्ट और कौन सा वन है वहां? सेवा कुंज। यस सेवा कुंज, सेवा कुंज, सारा विस्तार सेवा कुंज है। तो ये सेवा कुंज ने कुंज की हर रोज झाड़ू लगाने की सफाई करने का की सेवा श्री श्यामानंद की थी। श्यामानंद ये गोरीदास पंडित के शिष्य, हृदय चैतन्य के शिष्य श्यामानंद है। गोरीदास पंडित का गांव कौन सा है? नहीं सबको पता है, कालना, अंबिका कालना। गए थे ना अंबिका कालना? कोई नहीं गए, अंबिका कालना गए थे। मूर्ति जाती है और यू नो गोरनीता जाते हैं तो मूर्ति बन जाते हैं, वहां नहीं गए कालना? हाँ, तो ये गोरीदास पंडित के शिष्य, हृदय चैतन्य के शिष्य श्यामानंद पंडित। तो श्यामानंद पंडित हर रोज सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की उनकी सेवा थी। तो झाड़ू लगाते हुए भोर में एक दिन क्या हुआ कि राधा रानी ललिता सखी सब सखियां वहां सेवा कुंज में विहार कर रही थी। तो रात में सेवा कुंज में तो राधा कृष्ण का विहार होता है, तो राधा रानी का नुपुर गिर गया। तो नुपुर गिर गया तो सुबह जब श्यामानंद झाड़ू लगाते थे तो उनने दूर से देखा, बहुत बड़ा तेज और देदीप्यमान नुपुर उनको नजर में आया। तो नुपुर उन्हें तुरंत पहचान लिया कि श्रीमती राधा रानी का नुपुर है। श्यामानंद ने पहचान लिया तो उन्हें ले लिया। तो जब झाड़ू की सफाई पूरी हुई, सुबह हुआ, राधा रानी को पता चलता है अपना नुपुर खो बैठी है, तो ललिता सखी को कहती है राधा रानी कि जाओ मेरा नुपुर सेवा कुंज में गिर गया, तो उनको ढूंढ के लाओ। तो ललिता सखी डिस्काइज में अलग स्वरूप में जाती है और वहां श्यामानंद होते हैं तो उनको कहते हैं कि ये नूपुर गिर गया, आपको मिला है? हाँ मिला है। तो क्या लाओ, हमें वापस करो? बोलते नहीं, जिनका हो, क्योंकि जानते थे कि राधा रानी का, ये आपका नहीं है, जिनका है उनको भेजो। राधा रानी का ललिता सखी का तो दर्शन हो ही गया, अभी राधा रानी का दर्शन की अभिलाष। तो कहते हैं जिनका है उनको भेजो। तो फिर राधा रानी खुद आती है और श्यामानंद उनको नुपुर देते हैं और श्यामानंद अपने को धन्य समझते हैं और राधा रानी उनको, लंबी कहानी है, राधा रानी उनको नुपुर के साथ और नुपुर उनको उनको तिलक बना देते, नुपुर उनको उनके कपोल में डाल मारती है वैसे। तो उनका तिलक यहाँ से बीच में से खोखला और एक लाइन बन गई, लाइन लाइन से तिलक ऐसे हो गए और बीच में जो सॉलिड भाग होता है वो नहीं होता। तो ये भी जीवक गोस्वामी के साथ उनकी लीला है, ये पुस्तिका वहां देते हैं, जब जाओगे फ्री में पुस्तिका देते हैं। तो तिलक स्पेशल बन गया श्यामानंद का। गोड़िया वैष्णव ने ये बहुत उनका ऑपोजिशन किया। तो ठीक है, नुपुर मिला और उनके साथ राधा रानी ने अपने हाथ से बनाई हुई राधा श्याम सुंदर की सुंदर विग्रह, इतनी बड़ी विग्रह श्यामानंद को पूजा के लिए दिए, जो अभी तक वो श्यामा राधा श्याम सुंदर के मंदिर में आप जाओगे दर्शन करोगे, सामने बड़ी मूर्ति है, कितनी बड़ी राधा श्याम सुंदर की, और आपके राइट साइड में, डीटी के लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में सुंदर छोटी मूर्ति राधा श्याम सुंदर की, स्वयं प्रकाशित राधा रानी ने श्यामानंद को दी थी, वो मूर्तियों का ओरिजिनल मूर्तियों का दर्शन आपको हो सकते हैं। तो ये नुपुर और तिलक, तो राधा रानी का नुपुर का नाम क्या है, रत्न गोपुर है, रत्न गोपुर। इनकी जंकार श्री मधुसूदन को क्या कर दिया है, स्टब, पेड़वत है ना, पेड़ के तने के बराबर कृष्ण हो जाते स्थित, उनको जड़वत बना देती है राधा रानी, फूल च्यवन करती है और गार्डन में खड़ी है और श्याम सुंदर के लिए फूल च्यवन करती है। श्री राधा जी मेघांबर और कुरुविंद नील नामक दो प्रकार के वस्त्र धारण करती है, पहला तो उनका अपना प्रिय मेघ के समान नीले रंग का और दूसरा श्री कृष्ण का प्रिय लाल रंग का है, तो लाल रंग का पहनती है, लाल रंग, और अपना अपना प्रिय ब्लू और कृष्ण का प्रिय, कृष्ण को खुश करने के लिए, कृष्ण को आनंद देने के लिए लाल रंग का और अपने ब्लू रंग, ब्लू रंग और लाल रंग, कृष्ण का लाल अपना ब्लू। चारों ओर से मणियों के द्वारा जड़े हुए दर्पण का नाम सुधांशु दर्प हरण है। दर्प हरण का अर्थ क्या होता है, दर्प किसे कहते हैं, वेरी गुड, यू गॉट इट, दर्प अभिमान, दर्प 18 अहंकार बलम दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ये ब्रह्म भाव को पामता है कौन, जो दर्प से रहित है, दर्प अभिमान, स्वाभिमान, अहंकार अभिमान, अहम का मैं, दर्प। तो दर्प ये दर्पण, उनका दर्पण का नाम क्या है? दर्प हरण, अपना अभिमान हरण हरता है। सो दर्पण दर्प हरण है, अर्थात जो दर्पण अपनी शोभा से सुधा कर, जो दर्पण अपनी शोभा से सुधा कर अर्थात चंद्र के भी दर्प को चूर बिचूर कर देता है, चंद्र को भी, चंद्र का अभिमान हर लेता है। ये दर्पण राजारानी को सखी दिखा दे, कितनी सुंदर लग रही है राजा कृष्णोदरी राधारानी, और पीछे वाली सखी चामर डुला रही और दर्पण से उनके श्रृंगार कर रही है। दर्पण में कृष्ण दिखाई दे रहे, दर्पण तो राधारानी दर्पण में कृष्ण को का दर्शन करती है, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण सामने है नहीं लेकिन मंत्र मुग्ध हो गई कृष्ण का दर्शन कर। सुवर्ण सदा का बालों में लगाए जाने वाले सोने से बने कांटे का नाम नर्मदा है। कांटे लगाते हैं पीन वैसे और बालों को बराबर सजाने के लिए कांटे होते हैं, वो कांटों का नाम का क्या है? नर्मदा, जो नदी है नर्मदा, रत्न कंति, रत्नों से जड़ी हुई कंदी का नाम स्वस्तिदा, स्वस्तिदा, और वाटिका अर्थात पुष्प उद्यान का नाम कंदर्प कुहली है। कंदर्प अर्थात कामदेव, उद्यान का नाम है कंदर्प कुहली। यह उद्यान सदा सर्वदा पुष्पों से विभूषित रहता है। उद्यान, ये उद्यान कंदर्प कुहली उद्यान राधारानी का, और फूलों से सुसज्जित रहता है हमेश, फूलों से और फूलों का च्यवन करने के लिए हमेशा राधा कृष्ण के लिए च्यवन करती है फूलों का। उद्यान स्थित सुवर्ण युति पुष्प की लता का नाम तंडितवल्ली है, क्योंकि यह विद्युत की शोभा से परिपूर्ण है। कुंड निज नाम अर्थात श्री राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। इसी श्री राधा कुंड के तट पर स्थित निप वेदी अर्थात कदम्ब वृक्ष के नीचे बनी हुई वेदी श्री राधा कृष्ण के बैठने का स्थान है। यहाँ वे परस्पर नानाविध गुप्त कथों कथन करते हैं। सुंदर चित्र है राधा कुंड और ये वेदी है, वेदी, ये वेदी में ये राधा कुंड, राधा कुंड में राधा रानी और सखिया और कृष्ण जल के लिए जल में लीलाएं कर रहे हैं, और ये वेदी में बैठ के हास परिहास कर रहे हैं। तो राधा कृष्ण केले के तीन सेंटर है, तीन योगपीठ है ब्रज में। अर्ली मॉर्निंग सुबह का, सुबह की योगपीठ है वृंदाकुंड। ते वृंदाकुंड ये सुबह राधा कृष्ण की लीलाओं का सेंटर है। नंदगांव, नंदगांव में भगवान 3:30 बजे उठते हैं और बाद में उनकी दिनचर्या शुरू करते हैं, और राधा रानी जावट से आती हैं और वृंदा देवी अपने सुख सारिकाओं के साथ सारा व्रत की लीलाएं का मैनेजमेंट कर लेती हैं। दोपहर की मध्याह्न काल की योगपीठ है राधा कुंड, राधा कुंड ये दोपहर की योगपीठ है जहाँ दोपहर की लीलाएं, दान के लिए लीलाएं और कई कई लीलाएं अष्ट सखियों के साथ वहां होती है। अभी भी अष्टकालीय लीला, 8 प्रहर लीला अष्ट प्रहर लीलाएं ब्रज में राधा कृष्ण की अभी भी होती हैं, लेकिन चर्म चक्षु देखे तार प्रपंच रमय, दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहर विलास, गोप गोपियों के साथ राधा कृष्ण का विलास विहर विरहर विरह अमीन विरह नहीं विहार विहार जो विहार कर रहे। तो जो दिव्य चक्षु से देखता है उनको अभी भी राधा कृष्ण की लीलाएं का दर्शन वहां होता है, जैसे रूप सनातन अभी श्यामानंद की एक स्टोरी कही, वैसे साक्षात दर्शन करते थे राधा रानी का। जैसे नंदगांव के पूर्व दिशा की ओर 13 कदम है, वहां भगवान कृष्ण अपनी 9 लाख गायों को लेके गोचारण करने ले जाते थे, तो कदम के पेड़ के ऊपर से 9 लाख गायों को जब सूरज ढलने आता है तो बुलाते हैं, हर्रे का नाम लेके बुलाते हैं, सुरभि या बहुला या ऐसे गोप नाम लेके बुलाते थे, तो सब गाय भागी हुई आती थी। और बाद में नंद के नंदगांव में भगवान गाय के साथ वो है ना बरहा पीड़म नज में एंटर होना, तो वैसे भगवान आते हैं गोपियां देखती हैं वगैरह। तो हमारा विषय है 13 कदम, तो 13 कदम में रूप गोस्वामी वहां रहते थे, कई समय तक रहते थे, और वहां ही उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु उद्वल नीलामणि वहां ही लिखा है, 13 कदम वहां रहते हुए। तो वहां एक दिन खबर मिली कि, और वहां कुछ खान पान जंगल था, खेत थे, सब जो भी था जंगल तो था, खेत तो बाद में आए। तो 13 कदम जब रूप गोस्वामी रहते थे, तो एक दिन सनातन गोस्वामी आने वाले थे, बड़े भैया और उनके गुरु, तो रूप गोस्वामी को इच्छा हुई कि मैं अगर मेरे गुरुदेव के लिए आ रहे हैं तो थोड़ी सी खीर मैं अर्पण करूं तो कितना अच्छा होता, ऐसी इच्छा की। लेकिन कुछ खान पान था नहीं और कुछ सामान था नहीं, और मधुकरी अगर कर ली तो कर ली, नहीं तो वैसे चला लेते थे, लेकिन इच्छा हुई। लेकिन उनको दुख हुआ कि मैं कैसे बनाऊं, तो दुख व्यक्त करते हैं। तो इतने में एक राधा रानी छोटी सी कन्या का कन्या बनके राधा रानी सुंदर दूध राइस चीनी इलायची सारा सामान खीर बनाने का ड्राई फ्रूट्स सब कुछ लेके आती है, और कहते हैं बाबा बाबा ये मेरी माता ने भेजा, और मैं मेरा गांव है जावट, और जावट से मैं आई हूँ, और मेरी मैया ने भेजा है आपके लिए। तो बाबा खुश तो हो गए कि बहुत अच्छा है, और बाद में कहती है राधा रानी क्या आपको पकाना आता है? बाबा कहते हैं नहीं नहीं मुझे पकाना तो नहीं आता, लेकिन पका लूंगा। बोलते हैं नहीं मैं पका लेती हूँ आपके लिए। राधा रानी खीर बनाती है सुंदर, और बाद में राधा रानी खीर बना के चले जाती है। बाद में सनातन गोस्वामी आते हैं, तो भोग लगा के रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को खीर का प्रसाद देते हैं। तो तो जैसे ही जीव पर पहला कौर गया, तुरंत सनातन गोस्वामी को पता चल गया और राधा रानी के आगे कहती कि मैं जावट की हूँ, मेरे बाबा का नाम ये है, मेरी मैया का नाम ये है और मैं तो रूप गोस्वामी, अब सनातन गोस्वामी को तुरंत पता चल गया दिव्यता कि ये कोई भौतिक जगत की खीर नहीं, ये राधा रानी ने खुद बनाई है। तो रूप गोस्वामी को डांटते हैं, क्या डांटते हैं कि आपने राधा रानी को क्यों तकलीफ दी, ऐसा डांटते हैं रूप गोस्वामी को। तो बोलते हैं राधा रानी नहीं थी, ये कोई कन्या थी और उनके माता पिता का नाम भी बता के गई है। और तो कहते हैं चलो जाओ, जाते हैं माता पिता को मिलते हैं उनके। तो माता पिता तो मिल गए लेकिन उन कन्या का नाम भी मिल गया, लेकिन माता पिता कहते हैं मेरी कन्या तो इधर है ही नहीं, वो तो 10 दिन से अपने मामा के घर गई है और यहाँ न थी और नहीं है। तो राधा रानी ऐसे क्या के गई तो बिल्कुल पता चल गया कि ये खुद राधा रानी ही थी, वो कन्या नहीं थी जो क्या के गई। तो ये राधा रानी सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाती है। ये लीला है, सारी लीला है, रज की लीला है। राधा रानी अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करती है, भक्त वत्सला है। ये राधा रानी का सबसे श्रेष्ठ गुण है, जैसे कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ गुण है भक्त वत्सलता, भक्त वश्यता, भक्त को वश, भक्त के भक्त प्रिय है, भक्त वश्यता, भक्त वत्सलता। इसी तरह राधा रानी भी भक्त वत्सला है। तो आगे चलते हैं, मल्ला और धनाश्री नामक दो राग हृदय मोदम अर्थात मन मोहनकारी है, चालिक्य नामक नृत्य ही प्रिय नृत्य है। तो राधा रानी के दो राग, राधा रानी के दो राग हैं जो गाती हैं। तो कौन से राग, दो राग हैं, मलार राग और धनाश्री, ये दो राग हृदय मोदन अर्थात मनमोहक है, मनमोहन कार्य है। चालिक्य नामक नृत्य ही प्रिय नृत्य है, राधा रानी सुंदर नृत्य करती है। नृत्य कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, सब गमन दिव्य जगत में जब कोई चलता है तो कैसे चलता है, ऐसे नाचते हुए चलते। कथा गानम बोलते हैं तो गाते हुए बोलते हैं और गमन करते हैं तो कथा गानम नाट्यम गमन अपि, गमन करते हैं तो नाचते हुए गमन करते हैं। तो नृत्य करते हुए राधा कृष्ण चलते हैं, नृत्य नृत्य करते हुए। कथा गानम नाट्यम गमन अपि, नाट्यम गमन वंशी प्रिय सखी। तो चालिक्य नामक नृत्य ही प्रिय नृत्य है। रुद्रवल्ल की नाम की वीणा ही अन्य यंत्रों की उपेक्षा प्रिय वाद्य यंत्र है। राधारानी का वाद्य यंत्र कौन सा है, रुद्रवल्ल की, रुद्रवल्ल की। श्री राधा की जन्म तिथि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, यह अष्टमी श्री राधा के जन्म श्री राधाष्टमी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। तो राधाष्टमी हमारे इस्कॉन में बहुत सुंदर मनाई जाती है। तथा इस तिथि में चंद्रदेव 16 कांताओं अर्थात 16 कलाओं के साथ रमण करते हैं। अष्टमी में 8 कलाओं का प्रकाश स्वाभाविक होने पर भी भगवान की योग माया शक्ति से चंद्रदेव ने श्री राधा अष्टमी की रात में 16 कलाओं में पूर्णता प्राप्त की है। तो राधा अष्टमी के दिन अष्टमी होती है, लेकिन चंद्र पूर्ण कला 16 कला से सुशोभित रहता अष्टमी के दिन। तो राधा अष्टमी तो राधा का जन्म भौतिक जगत में हुआ। उनकी 2-3 कहानियां हैं, 2-3 राधा रानी का अपीयरेंस। तो कमल के फूल में जमुना नदी में राधा रानी होती है। तो ऋषभानु राजा जब स्नान करने सुबह जाते हैं तो ये सुंदर कन्या का रुदन का आवाज आता कमल में। तो वो कन्या को घर लेके आते हैं, वो है राधा रानी। यद्यपि वृंदावन नाथ श्री राधा कृष्ण के असंख्य परिकर है, तथापि यहाँ उनका दिग्दर्शन मात्र प्रदर्शित किया गया है। राधा कृष्ण के कितने परिकर हैं? असंख्य परिकर मतलब प्रिय सखी, नर्म सखा, प्रिय सखा और कई कई आगे जूत में हमने अलग अलग बहुत से। तो ये यूथ है, एक यूथ, और यूथ कितना बड़ा होता है ये पहले से बताया गया है कि यूथ में कितनी गोपियां अथवा गोप होते हैं। तो रस तत्व जानने वालों ने युद्ध को पुनः 9 प्रकार के विभागों में विभाजित किया है। यथा युद्ध के छोटे छोटे विभाग कुल के छोटे छोटे विभाग मंडल के छोटे छोटे विभाग वर्ग के छोटे छोटे विभाग गण के छोटे छोटे विभाग संवाय के छोटे छोटे विभाग संचय के छोटे छोटे विभाग समाज तथा समाज के छोटे छोटे विभाग समन्वय कहलाते हैं। तो युद्ध कितना बड़ा है, और हर गोपी जो अष्ट सखी है युथेश्वरी है, युद्ध की ईश्वरी, युद्ध को कंट्रोल करने वाली और कलयुग में संगठन में शक्ति है। मैं कितना करूं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं कितना ये लव ऑफ कृष्णा का जो फल है, ये कृष्ण प्रेम रूपी फल मैं कितना बांटूंगा। आप सब मुझे हेल्प कीजिए, आप सब। तो ये युथेश्वरी राधा रानी सब युथेश्वरियों को खुश रखती है, अपने थाम के नीचे रखती है, और सब उनको वशीभूत रहते हैं, उनको वश में रहते हैं, राधा रानी के वश में सब युथेश्वरी, और युथेश्वरी के वश में नीचे वाले कुल और मंडल और ये भक्ति वृक्ष सारा नीचे तक है ना, नित्य प्रेषी। तो ये है संगठन, एकता मतलब एकता, एक ही आवाज सबका है ना। एक तार अनेक तार होते हैं तो एक तार जैसे बजना चाहिए, सब ट्यून में बजना चाहिए। तो उनसे म्यूजिक सुंदर मेलोडियस म्यूजिक, लेकिन बेतार बेसुर एक तार यहाँ वहाँ, दूसरा तार वहाँ, वैसा वायलिन बजता है बेसुर, ऐसा नहीं होना चाहिए। युद्ध युद्धेश्वर चक्रपति, क्या चक्रपति, उप चक्रपति और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको बोलते इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राधा रानी इशारा करे वैसे लीला का सेटअप तुरंत हो जाए, सखिया और सखा दोनों मिलके सारा मैनेजमेंट, उनके विहार लीला का सेटअप। और एक धर्मा है ये आध्यात्मिक जगत में सब एक एक सुर, सबका ध्यान एक, सबका सबका काम एक, एक दूसरों के पर नॉट स्टेपिंग ऑन ईच अदर टो, हिंदी में एक दूसरों के पाँव पर कुहाड़ी नहीं लगाना, एक दूसरों के पाँव पर नॉट स्टेपिंग ऑन एनीबॉडी एल्सेस टो, हार्मनी हार्मनी हार्मोनाइज। तो ये आध्यात्मिक जगत है, वहां सब कोई हार्मनी में चलते हैं। और आइडिया है राधा कृष्ण की उपासना सेवा विहार लीला के लिए। सो सखियों के कुल का वर्णन, युद्ध का वर्णन, कुल अर्थात युद्ध, ये कुल युद्ध के नीचे है, ये युद्ध कुल। तो युद्ध का छोटा छोटा विभाग को क्या कहते हैं, कुल। ये कुल का वर्णन है और एक ये सब कुल मिलके एक युद्ध बनता है। सर्वप्रथम सखियों के त्रिमंडल रूप तीन प्रकार के कुल का वर्णन किया जा रहा है। तीसरी योगपीठ है गोविंद, श्री गोविंद जी का मंदिर, राधा गोविंद देव जो उन जमाने में नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा और ऊंचा और विस्तार वाला और सॉलिड लाल पत्थर वाला, अभी भी वो गोविंद देव का मंदिर है। तीन मजले, चार मजले औरंगजेब ने ध्वंस कर दिए। तो वो गोविंद देव का मेन शिखर है, उनके बगल में एक एक योग माया का मंदिर है, योग माया का, वो योग माया के नीचे ये योगपीठ है, योगपीठ। आप कभी ले जाएंगे आपको अंदर नीचे, जाए कोई गया, कोई नहीं गया, आप गए अंदर, गए ना नीचे अंदर वो योगपीठ में, तो वहां राधा राधा गोविंद देव के चरणारविंद भी है। तो तीसरी योगपीठ जो सायं का राधा कृष्ण की लीलाओं का सेंटर है। और दूसरा क्या सवाल, ओके। सो सर्वप्रथम सखियों के त्रिमंडल रूप तीन प्रकार के कुल का वर्णन किया जा रहा है। प्रेम के तारतम्य से वह कुल समाज मंडल और गण के भेद से तीन प्रकार का है। परम प्रेष्ठ, प्रेष्ठ मीन्स प्रिय, प्रेष्ठ आली भी सेव्यमानं स्मरामि, प्रेष्ठ आली, आली मीन्स सखी, प्रेष्ठ आली मीन्स प्रेष्ठ सखी, प्रेष्ठ आली भी सेव्यमानं स्मरामि, गोविंद देव का मंत्र है। परम प्रेष्ठ सखियों की समष्टि को समाज कहते हैं। परम प्रेष्ठ सखियां ललिता विशाखा इंदुलेखा चित्रा वगैरह, ये परम प्रेष्ठ सखियां, तो उनकी समष्टि को समाज कहते हैं। यही प्रथम प्रकार का कुल है, अष्ट सखियों का प्रथम कुल, अष्ट सखियां। सबको ये नाम कंठस्थ करना चाहिए, अष्ट सखी का, मेरे पीछे बोली अष्ट सखी का नाम, ललिता, चंपकलता, चित्रा तुंग विद्या विशाखा इंदुलेखा रंगदेवी सुदेवी, ये आठ सखियां परम प्रेष्ठ सखियां हैं और उनकी समष्टि को क्या कहते हैं? समाज। यही प्रथम प्रकार का कुल है अष्ट सखियों का। यही प्रथम प्रकार का कुल है, यह समाज वरिष्ठ और वर इन दो समन्वयों से युक्त है। वरिष्ठ ललनाएं सबसे अधिक विख्यात तथा सदैव सचिवता प्राप्त करने वाली अर्थात श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में सदैव सब प्रकार से सर्वाधिक सहायता करने वाली है। अष्ट सखी श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में सदैव सहायता करने वाली है और वो अकेली नहीं करती, उनके पीछे कई उनके अंडर कई सखियां उनका ऑर्डर लेती हैं, जेलती ऑर्डर ऑर्डर तुरंत भागती हैं। ऐसे ऐसा नहीं कि वो राधा रमन ललिता ने कुछ कहा और मैं सोचूंगी, मैं देखूंगी कैसे करूं कहां करूं क्यों करूं, ऐसा सोचती नहीं, भाग तुरंत ऑर्डर। तो अंतरंग लीलाओं में सदैव सब प्रकार से सर्वाधिक सहायता, सब प्रकार से सर्वाधिक विदाउट क्वेश्चन सहायता करने वाली है। जहां तक श्री राधा कृष्ण के प्रति इनके प्रेम की बात है, न तो कोई उनके समान है और न ही कोई इनके बढ़कर। ये अष्ट सखी के समान राधा कृष्ण को कोई प्रेम नहीं करता, उनसे न कोई ज्यादा और उनके बराबर। अष्ट सखी राधा कृष्ण को इसलिए वो परम प्रेष्ठ, इसलिए वो प्रेष्ठ परम प्रेष्ठ सखिया परम प्रेष्ठ सखी परम प्रेष्ठ सखी। यह वरिष्ठ ललनाएं सभी स्नेह युक्ता प्रेम युक्ता स्नेह युक्ता, स्नेह का अर्थ है जब प्रेम हृदय में पूर्ण पूर्ण होके बाहर आता है, जब हृदय में प्रेम छलक के बाहर आता है तो उनको बोलते हैं स्नेह, प्रेम के आगे की सीढ़ी स्नेह। तो यह वरिष्ठ ललनाएं सभी स्नेह युक्त हृदय वाली अनुगत सखियों के लिए परम आदरणीय, उनका अनुगमन करने असिस्टेंट कर असिस्टेंट सखिया उनकी मदद ने सखिया का अनुगत अनुगमन करती है, सखियों के लिए परम आदरणीय है तथा अपार गुण रूप आदि मधुरियों से विभूषित है। तो अनुगमन करना इतना तत्पर रहती है कि कब वो ऑर्डर दे कब मैं भागू, तत्पर। ये अष्ट सखियां युथेश्वरियां जब ऑर्डर दे मैं भागू, इसलिए वो आदरणीय है। ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता तुंग विद्या इंदुलेखा श्रीदेवी रंगदेवी सुदेवी, ये आठ वरिष्ठ सखियां हैं। तो ये अष्ट सखी ये युथेश्वरी है और इनके युद्ध में करोड़ों सखियां हैं, करोड़ों सखियां। तो ये ललिता देवी, ये ललिता देवी हमारे संप्रदाय की हम उनका अनुगत्य जो रूप मंजरी है रूप गोस्वामी, ये ललिता सखी का अनुगमन अनुगत्य करती है और ललिता सखी राधा रानी का राधा रानी कृष्ण की सेवा, तो ये सेवा का माध्यम है। तो ये ललिता सखी इन आठ वरिष्ठ सखियों में से श्री ललिता देवी सबसे श्रेष्ठ है। प्रिय सखिया भवे ज्येष्ठा सप्तमीश तिवासरय वरियसी, तो ललिता सखी क्या है? वरियसी श्रेष्ठ सखी है। यह अपनी प्रिय सखी श्री राधा से 27 दिन बड़ी है। श्री ललिता अनुराधा के नाम से विख्यात है तथा वामा और प्रखरा नायिका के गुणों से विभूषित है। वामा वामा मतलब मैंने कहा था चंद्रावली बहुत सरल स्वभाव, कृष्णा कहे ये रात है लेकिन कृष्णा कहे दिन है, हाँ ये दिन है। तो दक्षिणा गोपियां बहुत सरल हृदय वाला, कृष्ण जो जैसा करे कहे वैसा तुरंत मान लो करो चलो जो करे कर, कृष्णा की खुशी में खुशी। और लेफ्ट विंग की वामे वामा वामा ऐसी सरल नहीं होती, मारने चली जाती है, गुस्सा करती है, कृष्ण की पिटाई भी कभी कभी कर लेती है, इतना बयान तो नहीं है लेकिन ऐसा कुछ कर सकती है, ये वामा है। तो ये ललिता सखी वामा है लेफ्ट साइड, और है भी लेफ्ट साइड में हमने देखा है ना। और प्रखरा नायिका के गुणों से विभूषित है, ललिता की अंग कांति गोरोचना दीप्तिमान द्रव्य विशेष के समान तथा वस्त्र मयूरपंख जैसे, ललिता सखी के वस्त्र मयूरपंख जैसा। श्री ललिता की माता का नाम शारदी और पिता का नाम ऋषोक है, इनके पति का नाम भैरव है जो गोवर्धन गोप के सखा है, गोवर्धन गोप के सखा है विशाखा, विशाखा सखी। विशाखा सखी की मुख्य सेवा क्या थी, तो ये गीत लिखती है और सुख सारिका सारिका गाती है, सूक्ष्मदी सारिका और दूसरी कौन सी सारिका सुभा सारिका, ये विशाखा देवी की रची हुई कविता है, सॉन्ग्स गाती है। तो उड़ीसा के दूसरी सखा विशाखा है, ये आचरण गुण तथा व्रतों में श्री राधा के समान है। जिस समय श्री राधिका का जन्म हुआ ठीक उसी समय विशाखा का भी जन्म हुआ। विशाखा के वस्त्र तारों से घिरे हुए आकाश मंडल के समान अर्थात सफेद पुट्टेदार नीलांबरी है तथा अंग कांति सौदामिनी की सौदामिनी के समान है। श्री विशाखा के पिता का नाम पावन है, ये पावन उनके पिता का नाम है, तो इनके पिता के नाम पर नंद ग्राम में जो बहुत बड़ा तालाब है उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है पावन सरोवर, क्या नाम है नंदगांव में सबसे बड़ा लेक नंदगांव की तलहटी में, आप जाओगे नंदगांव की एंड में बरसाना से जाओगे तो नंदगांव के एंड टी जंक्शन चौराया नहीं तीन राया आता है, तो वहां से लेफ्ट लोगे तो राइट में रूप से सनातन गोस्वामी की बैठक, आनंददास बाबा जी की बैठक समाधि, तो वो पावन सरोवर के किनारे और उस पार वल्लभाचार्य जी का की बैठक है पावन सरोवर। तो इनके पिताजी से नाम पर इनका नाम पड़ा पावन सरोवर। ये पावन मुखरा की बहन के पुत्र है, विशाखा की माता का नाम दक्षिणा है, वह जटिला की बहन की कन्या है, विशाखा के पति का नाम वाहिक गोप है। ये सब दर्शन से सब रिलेटिव होगी, यानी एक दूसरों से रिलेटेड, राधा रानी से विशाखा रिलेटेड है। चंपक लता तृतीया वरिष्ठ सखियों में तीसरी चंपक लता है, इनकी अंग कांति खिले हुए चंपक पुष्प के समान है, इसलिए उनका नाम है चंपक लता। ये श्री राधिका से एक दिन छोटी है, तथा इनके वस्त्र चास नीलकंठ नामक पक्षी के वर्ण जैसा है। श्री चंपकलता के पिता का नाम आराम तथा माता का नाम वाटिका है। इनके पति का नाम चंडाक्ष है। ये गुणों में प्राय विशाखा के समान है। चंपकलता गुणों में विशाखा के समान। चित्रा चिक्षोली, चित्रा का गांव कौन सा है? चिक्षोली, जो हम गोवर्धन हिल हमें बरसाना की हिल, जो बरसाना का जो पर्वत है उनमें उस पार जाओगे साकरी कोर आएंगे। साकरी कोर के बाद क्या आएगा? चिक्षोली है। चिक्षोली जो चित्रा सखी का गांव है। चिक्षोली वरिष्ठ सखियों में चौथी चित्रा है। इनकी अंग कांति काश्मीर अर्थात कुमकुम के समान गौरवर्ण तथा वस्त्र कांच के रंग जैसे है। वस्त्रों के पारदर्शी जैसे है, जैसे मखमल की साड़ी होती है। अभी भी कहीं जारी वाली उड़ी आती है आजकल कुछ ऐसा, तो पारदर्शी होता है, कांच कांच जैसा। तो उनके वस्त्र कैसे हैं? कांच के रंग जैसे है। ये श्री राधिका से 26 दिन छोटी, ये श्री कृष्ण के आनंद में आनंदित रहती है। श्री चित्रा के पिता का नाम चतुर है, जो सूर्य मित्र वृषभानु महाराज के चाचा लगते हैं। इनकी माता का नाम चर्चिका और पति का नाम पीठर है। तुंग विद्या वरिष्ठ सखी में पांचवी तुंग विद्या है। ये श्री राधिका से 5 दिन बड़ी। इनके श्री अंगों से चंद्र चंदन अर्थात कर्पूर मिश्र चंदन के समान सुगंध आती है। इनकी अंग कांति कुसुम के समान है। कुसुम सॉरी कुमकुम, कुमकुम के समान है। तुंग विद्या, तुंग विद्या के वस्त्र हल्के पीले रंग के हैं। ये दक्षिणा और प्रखरा नायिका के गुणों से विभूषित है। इनकी माता का नाम मेघा और पिता का नाम पुष्कर तथा पति का नाम बालिश है। इंदुलेखा सुंदर हास्य और पूजा का सामान लेके चल रहा। वरिष्ठ सख्य में छठी इंदुलेखा। इनकी अंग कांति हरिताल अर्थात पीत वर्ण के समान उज्ज्वल है। इनके वस्त्र अनार के फूलों के समान है। उनके वस्त्र कैसे हैं? अनार के फूलों के समान उज्ज्वल है। इनके वस्त्र अनार के फूलों के समान है। ये राधिका के राधिका से 3 दिन छोटी है। इंद्रलेखा की माता का नाम बेला तथा पिता का नाम सागर है। ये वामा और प्रखरा नायिका के गुणों से विभूषित है। इनके पति का नाम दुर्बल है। ये वामा कौन, दक्षिणा कौन, ये सब उज्ज्वल लीलामणि रस शास्त्र में आपको मिलेगा। इंद्रलेखा की माता का नाम बेला तथा पिता का नाम ये वामा और प्रखरा नायिका के गुणों से विभूषित है। इनके पिता का नाम दुर्बल है, रंगदेवी। वरिष्ठ सखे में सप्तमी सातवीं रंगदेवी है। इनकी अंग कांति कमल केस के समान तथा वस्त्र जवा पुष्प के समान कुछ लालिमा लिए हुए हैं। ये श्री राधा के राधा से 7 दिन छोटी हैं तथा गुण में प्राय चंपक लता के समान। ये सब शास्त्रों में पुराणों में से रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमें बता रहे। उनके पुस्तक, कौन सी पुस्तक? श्री राधा कृष्णा गुरु देश दीपिका। श्री रामदेव के पिता का नाम रामसा तथा माता का नाम करुणा है। इनके पति का नाम वक्रक्षण है, जो भैरव के कनिष्ठ भ्राता है। वर्ष संख्या में 8वीं सुदेवी है। ये रंग देवी की यमच अर्थात जुड़िया बहन है और मृदु स्वभाव की है। रंग देवी सुदेवी कौन है? जुड़िया बहन है। रूप गुण और स्वभाव आदि में अपनी बहन रंग देवी जैसी होने के कारण इन्हें देखकर रंग देवी का भ्रम होता है। रंग देवी के पति वक्रेक्षण के छोटे भाई के साथ इनका विवाह हुआ है। तो दोनों बहने दोनों भाइयों को ब्याही और दोनों एक सी लगती है। उपरोक्त 8 वरिष्ठ सखियों के अतिरिक्त अन्य 8 श्रेष्ठ सखियां वर नाम से जानी जाती है। वर सखियां ये सब 12 वर्षीया है। सखियों की उम्र 12 से 16, राधा रानी की उम्र भी 16 और मंजरियों की उम्र 12 या कम। तो ये सब 12 वर्षीया है और इनकी बाल्यावस्था प्रायः अतीत हो चुकी है। इनके नाम कलावती, सुभांगदा, हिरण्यांगी, रत्नलेखा, शिखावती, कंदर्प मंजरी, फुल्ल कलिका और अनग मंजरी है। कलावती, इनमें से कलावती अर्कमित्र के मामा उलांकुर नामक गोपी की कन्या है। अर्क, अर्क किसे कहते हैं? सूर्य को। तो अर्कमित्र के मामा कलांकुर नामक गोप की कन्या है। कृष्णा स्वधा उपगते धर्म ज्ञान आदि विशेषः कलो नष्ट दृशा मेष पुराण अर्को, पुराण अर्को अर्क सूर्य, पुराण रूपी सूर्य उदित, पुराण अर्को अधुना उदित। पुराण जो सूर्य के समान पुराण है, वो उन पुराण भागवत पुराण का उदय हुआ। पुराण अर्को अधुना उदित। तो अर्क का अर्थ क्या है? सूर्य। इनकी माता का नाम सिंधुमती है। ये हरिचंदन, हरिचंदन जैसे अंग कांति से युक्त तथा शुभ पक्षी की अंग प्रभा के समान वस्त्र धारण करने वाली है। विशाखा के पति वाहिक का अनुज कपोत इनका पति है। सुभांगदा, सुभांगदा मंगलमय स्वर्ण के समान उज्ज्वल अंग कांति वाली तथा विशाखा की छोटी बहन है। दो बहनें आई अभी तक। ये विशाखा की छोटी बहन है और आगे कौन सी दो बहनें आई? इनका विवाह चित्रा के पति पीटर के अनुज पतत्री के साथ हुआ। हिरण्यांगी, ये सब कौन सी सखियां हैं? वर सखी। और उनसे पहले कौन सी अर्ष्ट सखी थी? वरिष्ठ सखी अथवा परम प्रेष्ठा सखी। और ये कौन सी सखी है? वर सखी। राधा रानी की ये सखियां है, ये मुख्य सखियां है लेकिन अनंत सखियां होंगी। हिरण्यांगी स्वर्ण कांति वाली है। इनका जन्म हरिणी के गर्भ से हुआ है, जिसका वर्णन निम्नलिखित श्लोकों में किया गया है। इनके विग्रह शरीर की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है मानो सब प्रकार के सौंदर्य का मंदिर स्वरूप हो। अर्थात हिरण्यांगी खूबसूरत थी, सुंदर थी, और उनका जन्म किससे हुआ? हिरण्य से। ते पुत्री का नाम क्या है? हिरण्यांगी। हिरण्याक्षी की के पिता महावसु नामक गोप यजन से यज्ञ करने में रत रहने वाले यशस्वी धर्मात्मा तथा विचित्र गुणों से विभूषित तथा रवि मित्र वृषभानु महाराज के बंधु हैं। इन्हीं महावसु नामक गोप ने एक वीर पुत्र तथा एक सुंदर कन्या की अभिलाषा से संयतात्मा पुरोहित भागुरी के द्वारा एक यज्ञ प्रारंभ करवाया। यही कहानी है, कहानी है इधर। तो ये कहानी मैंने कह दी आपको कि चरु को अपनी चरु निकला, तो चरु क्या हुआ, सुचंद्रा ने जब इस चरु को भोजन किया तब शीघ्रता के कारण उसमें से थोड़ा सा हवयान आंगन में गिर पड़ा, और जो आंगन में गिर पड़ा वो हिरणी खा जाती है, और हिरणी को ये जन्म, हिरणी के गर्भ से उनका जन्म होता है, इसलिए उनका नाम है क्या? हिरण्यांगी। एक पुराण की कथा श्री रूप गोस्वामी ने यह लिखा है। इसके उपरांत यथोचित समय पर सुचंद्रा ने जिस पुत्र को जन्म दिया वह स्तोत्र कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तथा सुरंगी नामक हिरणी ने गोष्ठ में जिस कन्या को जन्म दिया उसका नाम हिरण्यांगी है। गांधर्वा श्री राधा इनकी अत्यंत प्रिय सखी है, और ये भी गांधर्वा श्री राधा को सर्वदा प्रिय है। ये खिले हुए अपराजित पुष्पों के समान वस्त्रों को धारण करती है। हिरण्यांगी के उदार मति वाले पिता ने